अध्याय चार, सात संबंध की मसी करो, रचना और उपरचना। आत्म खबर ही नहीं जाना, कबीर वाणी के उपयोग। पहले में ही मैंने निवेदन किया कि कबीर के समय के सामाजिक या साहित्यिक इतिहास के बारे में सही निष्कर्ष उस समय को समग्रता में देखकर ही निकाले जा सकते हैं। पिछले दो अध्यायों में हमने इस पर अमल करने की कोशिश की है। कबीर वाणी की प्राथमिकता के प्रसंग में यह बात और भी अधिक ध्यान में रखने योग्य है। ध्यान रखना चाहिए कि औपनिवेशिक ज्ञानकांड के बहुत पहले से आरंभिक आधुनिकता के भक्ति लोकवित में कबीर की वाणी पर विचार विमर्श चल रहा था। प्रामाणिक और विश्वसनीयता के सवाल इस विचार विमर्श में अंतर्निहित थे। 1604 ईस्वी में संकलित आदि ग्रंथ को कबीर की रचनाओं के लिखित रूप का प्राचीनतम स्रोत माना जाता रहा है। इसके आधारभूत पोथियों में गोविंदवाल नगर से प्राप्त पोथियां भी हैं, जिनका संकलन काल 1572 से 3 माना जाता है। इसमें कबीर के 50 पद मिलते हैं, लेकिन मूल गोविंदवाल पोथियां सुलभ नहीं है। उनकी जो नकलें सुलभ हैं वे 2 सदी बाद की हैं। इस लिहाज से अब तक उपलब्ध पांडुलिपियों में कबीर का सबसे प्राचीन लिखित पाठ पद सूरदास जी का मिलता है। यह पोथी रामदास रत्न के फतेहपुर राजस्थान में संवत 1639 विक्रम संवत सन 1582 ईस्वी में कुंवर छेतर जी के पढ़ने के लिए तैयार की थी। इसकी फोटोकॉपी का प्रकाशन गोपाल नारायण बहुरा और केनेथ ब्रायंट के संपादन में महाराज सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर 1984 में हुआ था। अध्येताओं के बीच फतेहपुर पांडुलिपि नाम से विख्यात इस संकलन का महत्व सूरदास, कबीर और नामदेव के पाठ निर्धारण के लिए तो है ही। इस कारण में भी यह एक और प्रमाण में इस बात का आरंभिक आधुनिक काल की चेतना में सगुण निर्गुण के बीच वैसा कड़ा विभाजन नहीं था जैसा कि औपनिवेशिक आधुनिकता ने आरोपित कर दिया। संकलन में सूरदास और कबीर के सिवा नामदेव, रैदास, कन्हैयादास, परमानंद दास, मधुकर साह और कील दास आदि कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तुलसीदास की कोई रचना इसमें नहीं हो सकता है कि संकलनकर्ता और उसके संरक्षक की रुचि शास्त्रोक्त भक्ति में कम और काव्योक्त भक्ति में अधिक हो। शास्त्रोक्त काव्योक्त के बारे में हमें 7वां अध्याय में बात करेंगे। पद सूरदास जी का में संकलित कबीर पदों की पहली पंक्तियां और संकलन में उनकी पृष्ठ संख्याएं इस प्रकार है। सर्वत तट हंसनी तिसाई 76, दूसरा कारणी कौन संवारे देही, तीसरा राजा राम ए भनी चेतावनी, चौथा रामबान अनियारे तीर, पांचवा दुभर पनिया भरन न जाई, छठा अमर मेरी काया नरु जाने, सातवां स्वात पतंग भरे जली आई, आठवां जिही नर राम भगत नहीं साधी, नवा जली जाऊं ऐसो जीवना, दसा मेरी मति बौरी बिसारियो, ग्यारहवां दू गारूडी मैं विस्का माता, और 12वां अब मारिबो तब जाइगो कहाँ, 13वां रवि रहियो तक अवर नहीं हुआ, 14वां नाम अनु रहे न घरु होई मेरा, 15वां कहाँ करो कैसे तरो। पहली पंक्तियों के आधार पर आप पूरे पद याद कर सकते हैं। कबीर वाणी की इस प्राचीनतम लेख बुद्धि रूप की ग्रंथावली और बीजक के पाठों की तुलना करने पर मालूम पड़ता है कि इन 15 में से 3 अब मरिबो तब जाइबो, कहीं रवि रहियो एक अवर नहीं हुआ, और ना मानू रहे न घरु होई मेरा को छोड़ बाकी 12 पद हल्के पाठांतर के साथ ग्रंथावली में उपलब्ध हैं, जबकि बीजक में केवल एक पद करनी कौन सवारे थी ही मिलता है। आप देखेंगे कि इन पदों में से किसी में भी हम काशी के जुलाहे कबीर से नहीं मिलते। इन पदों का प्रतिपाद्य प्रेम ही है। इस प्रेम में बाह्याचार व्यर्थता की चर्चा है, योग साधना का उल्लेख है, प्रेम को साधे और योग को साधना मानते हुए ही है। जिस सामाजिक आलोचना को कुछ लोग कबीर की रचना में एकमात्र ध्यान देने योग्य वस्तु मानते हैं, वह इन पदों में न के बराबर ही मिलती है। तो क्या कबीर काशी के जुलाहे नहीं थे? क्या उन्होंने सामाजिक आलोचना नहीं की थी? प्राचीनतम पाठ पर ही भरोसा करने वालों को तो ऐसा ही मानना चाहिए, लेकिन कबीर के निधन 1518 के 50 साल के भीतर भीतर उनके गुण गाने वाले हरिराम व्यास और 1590 के आसपास कबीर परिचयी की रचना करने वाले अनंत दास तो कबीर की कुछ और ही छवि पेश करते हैं। और ये दोनों ही वैष्णव होने के कारण आजकल के कुछ विद्वानों को संदिग्ध स्रोत लगते हैं। पांडुलिपियों को उनके संदर्भ का ध्यान रखते हुए पढ़ने से ही ढंग की बात निकल सकती है। पद सूरदास जी का में सामाजिक आलोचना या काशी के जुलाहे होने का संकेत नहीं मिलता, इसलिए कबीर न तो काशी के जुलाहे थे, न उन्होंने सामाजिक आलोचना की थी, वह निष्कर्ष बेढंगा होगा। इससे भी ज्यादा बेढंगा होगा यह कहना कि रामदास रत्न कबीर के ब्राह्मणीकरण के एजेंडा के साथ पद सूरदास जी का तैयार कर रहे थे। फतेहपुर पांडुलिपि की संकलनकर्ता केवल 15 पद संकलित करके यह नहीं कह रहा था कि बाकी सैकड़ों कबीर पद कबीर के ही हैं ही नहीं, वह अपने संकलन में अपनी पसंद के प्रसंगानुकूल पदों का चुनाव कर रहा था। वह अपने और अपने संरक्षक के पढ़ने के लिए पद सूरदास जी का पोथी तैयार कर रहा था। कबीर का पाठ निर्धारण करने के लिए निकले रिसर्च स्कॉलर का काम आसान करने के लिए नहीं, उनके चुनाव संदर्भ की उपेक्षा करके, अन्य पांडुलिपियों की उपेक्षा करके, मौखिक परंपरा की कोरी साजिश कर मान करके बस एक फतेहपुर पांडुलिपि को ही पढ़ेंगे तो पहुंचना इसी निष्कर्ष पे पड़ेगा कि कबीर काशी के जुलाहे नहीं थे। संदर्भ चाहे मौखिक परंपरा से प्राप्त रचना उपरचना का हो, चाहे पांडुलिपियों का उस वक्त के लोगों को भोले भाले और बुद्धू मानने में मानने वालों का ही बुद्धूपन प्रकट होता है, यह बात कबीर वाणी का पाठ निर्धारण करते समय याद रखनी चाहिए। पांडुलिपियों पर काम करने के लिए विनांद कैलवर्त उचित रूप से विख्यात है। कबीर वाणी की प्रामाणिकता के सवाल में उनकी गहरी दिलचस्पी है। सन 2000 में उन्होंने 10 पांडुलिपियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कबीर वाणी का सहस्राब्दी पाठ कबीर मिलेनियम वाणी प्रस्तुत किया। 1570 लेकर 1681 तक की 10 पांडुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन कर विनांद ने कुल 1593 पद पाठांतरों सहित संकलित किए हैं। इन पांडुलिपियों में 1570 से 72 की गोयंदवाल पोथियों से लेकर आदि ग्रंथ, विभिन्न सर्वांगियों और पंचवाणियों की पांडुलिपियां शामिल हैं। हालांकि जैसा कह चुके हैं कि गोयंदवाल पोथियों की 17वीं 18वीं सदी की नकलें ही अब सुलभ हैं, मूल पोथियां नहीं, लेकिन खैर इससे विनांद के परिश्रम का महत्व कम नहीं हो जाता। विनांद का प्रोजेक्ट तो बेहद महत्वाकांक्षी है, उसकी ठसक भी कम नहीं। मौखिक परंपराओं के प्रति उचित आदर भाव के बावजूद विनांद साहब कबीर की उपरचनाओं को बर्दाश्त करने की तैयार नहीं। वे रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर डेविड लोरेंजन तक पर कुपित हैं कि ये लोग कबीर के नाम पर न जाने किस किस के पदों का अनुवाद करते हैं। संकलन के आमुख में ही डेविड लोरेंजन द्वारा अनुदित कबीर के सर्वाधिक लोकप्रिय पदों के बहाने विनांद अपने प्रोजेक्ट के ऊंचाई के अनुवादकों और अध्येताओं को सीख देते हैं कि प्रामाणिकता की परवाह किए बिना ही किसी सुंदर कबीर के पद अनुवादक की उत्सुकता में समझ सकता है। लेकिन ऐसे गीतों के आधार पर हमें कबीर और 15वीं सदी के बनारस पर टिप्पणियां लिखना शुरू नहीं कर देना चाहिए। सलाह काफी अच्छा है, लेकिन विनांद के अपने कबीर वाणी संकलन के संदर्भ में कितनी रोचक और मनोरंजक भी हो जाती है यह हम थोड़ी देर में देखेंगे। विनांद साहब यह भी बताते हैं कि कबीर का उपयोग विभिन्न निहित स्वार्थों द्वारा होता है, सो अब कबीर के उद्धार की जरूरत है, जो कि प्राचीनतम पांडुलिपियों की मेहनत करके और पाठ निर्धारण में बहुत सख्ती अपना कर ही किया जा सकता है। विनांद साहब के अपने शब्दों में कहा है, निहित स्वार्थों ने कबीर को बहुत जल्दी हथिया लिया। 17वीं सदी में गोरखपंथियों और रामानंदियों से लेकर 20वीं सदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महाब्राह्मणों तथा अन्य सामाजिक समूहों तक के कबीर का इस्तेमाल अपने अपने विचारधारात्मक उद्देश्यों और फायदों के लिए ही किया। इसी कारण कबीर छाप वाले पदों की संख्या बढ़ती गई। यही स्थिति मीराबाई 1503 से 1546 के साथ है, जिन्होंने शायद 100 से भी अधिक पद रचे होंगे, लेकिन 20वीं सदी के अंत में उनके नाम से 597 पद उपलब्ध हैं। द्विवेदी जी की पुस्तक कबीर के परिशिष्ट के लिए दिए गए पदों की चर्चा करते हुए विनांद से उसी पूरी पुस्तक को कबीर का ब्राह्मणवाद एप्रोशिएशन कहे बिना रह जाता। वैसा रहा जा सकता है यदि पुस्तक को ध्यान से पढ़ लेते थे। सातवें द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका भी पढ़ लेना और हितकारी रहता है। कबीर ही पढ़ते तो भी देख पाते कि द्विवेदी जी कबीर का ब्राह्मणीकरण नहीं नाथीकरण, चूंकि द्विवेदी जी ही नहीं सभी इतिहासकार नाथों का महायान बौद्ध परंपरा के लोकप्रिय रूप में विकसित मानते हैं, इसलिए असल में बौद्धिकरण कर रहे थे। द्विवेदी जी की कबीर तक पहुंचने के पहले अपने पाठक को नाथपंथी साधना और सिद्धांतों का विस्तृत परिचय देते रहें, पूरी पुस्तक में सिद्ध करते रहें कि पौराणिक हिंदू मत उर्फ ब्राह्मणवाद को कबीर ने बस दूर दूर से ही देखा था। वे तो तत्ववाद से लेकर बाह्याचारवाद विवर्जन तक के मामले में लोक धर्म का रूप लेते जा रहे, बौद्ध धर्म के नाथ संस्करण से ही प्रेरित थे। द्विवेदी जी तो कबीरकालीन हिंदी साहित्य के सार्थकता क्रमशः लोक धर्म का रूप करण ग्रहण करते जा रहे, बौद्ध धर्म का थोड़ा भी पता दे पाने में मान रहे थे, लेकिन ज्ञानी लोग हैं कि द्विवेदी जी को कबीर के ब्राह्मणीकरण का ही कुश्रेय दिए जा रहे थे। द्विवेदी जी आखिरकार जन्म से ब्राह्मण थे और कर ही क्या सकते थे, यह तो यूरोपीय अध्येताओं ही कर सकता था कि अपने यूरोपीय और ईसाई संस्कारों से मुक्त होकर सोच विचार कर सके। बाकी तो कबीर से लेकर द्विवेदी जी तक को कुछ कहना होना जन्म से ही होना है। औपनिवेशिक आधुनिकता को सबसे पहले भयावह सफलता यही है कि गैर यूरोपी मनुष्य, वह चाहे कबीर हो या उनके अध्येता की सोच को वंश पर ही निर्भर मानने वाले आधुनिक वर्णाश्रमवाद को अधिकांश लोगों ने आत्मसात किया है, स्वयं द्विवेदी जी ने भी, जैसा कि पहले पिछले अध्याय में देख चुके हैं। कबीर का उपयोग विचारधारात्मक उद्देश्यों और फायदों के लिए औपनिवेशिक ज्ञानकांड से जुड़े प्रोटेस्टेंट मिशनरी रेवेंडेंट वेस्टकॉट और रेवेंडेंट अहमद शाह ने भी किया था। रामचरितमानस के लंका कांड में योद्धा राम के स्थान पर तथागत जैसे राम के दर्शन महज इसलिए कर लेने वाली कि उस पोथी को डेला टोम्बा ने कबीरिस्ती रामायण कह दिया था। शार्लोट वादीवेल भी विचारधारात्मक फायदे के लिए कबीर का उपयोग करने की हड़बड़ी में ही थी। परम ज्ञानियों को भी दुर्लभ आत्मविश्वासी के साथ कबीर को विधवा ब्राह्मणी का पुत्र मानने वालों में अनंत दास को शामिल करने वाले विनय धारवाड़कर भी कबीर का उपयोग करने की जल्दी में ही कबीर परिचय के एक बार देख लेने का समय नहीं निकाल पाए। विनांत कैलवर्थ को तो उपयोग करने की ऐसी हड़बड़ी है कि वे जिन पांडुलिपियों का उद्धार करते हैं स्वयं उनकी मर्म नहीं पढ़ पाते, जैसा कि हम मिलेनियम कबीर वाणी के ही संग्रह प्रसंग में अभी देखेंगे। लेकिन औपनिवेशिक आधुनिकता में रची बसी विभूतियां वेस्टकॉट वादीवेल विनांत विनय के बारे में तो यह सोचना तक वुफ्र है कि उनका भी कोई गुप्त एजेंडा हो सकता है। वे भी किसी विचारधारात्मक फायदे के लिए कबीर का दुरुपयोग कर रहे हो सकते हैं। उपयोग एप्रोप्रिएशन साजिश बुद्धूपन जैसे की कॉन्सेप्ट्स जो देशज आधुनिकता और गैर यूरोपीय ज्ञानकांड के प्रसंग में इस्तेमाल करने के लिए हैं। वेस्टकॉट वादीवेल विनांत विनय तो औपनिवेशिक आधुनिकता उत्तर आधुनिकता के माथे पर पड़े ऐतिहासिक दायित्व का निर्वाह कर रहे भोले वाले लोगों को साजिश लोगों के चंगुल से निकालने का वाइट मैन बर्डन कंधों पर ढो रहे थे। भारत की देशज आधुनिकता आधुनिकता में भक्ति का लोकप्रित रच रहे थे। देश भाषाओं के जरिए ब्राह्मण सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा गोरखपंथी रामानंदी और कबीरपंथी तो कबीर का बस उपयोग कर रहे थे और साजिश ब्राह्मणों के अलावा कहीं और चतुराई के दर्शन तक जिन्हें नहीं होते थे वेस्टकॉट वादीवेल विनय विनांत कबीर का उद्धार कर रहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अच्छे या बुरे विद्वान नहीं थे, बस ब्राह्मण थे। विनांत कैलवर्थ वादीवेल और वेस्टकॉट सिर्फ और सिर्फ विद्वान थे। उनके प्रसंग में न तो उसने ईसाई होने की चर्चा होनी चाहिए और न यूरोपी होने की। तरह तरह की टोपियां पहनने, तरह तरह के छाप तिलक लगाए, तरह तरह के अनुमान भिड़ाने वाले, दूसरे का उपदेश पिलाने वाले और स्वयं को हर तरह की समस्याओं से ऊपर उठाने वाले, ऐसे ही लोगों के प्रसंग में कबीर ने कहा था, आत्म खबरी नहीं जाना। पंडित बेचारा क्या करे, कबीर कहीं मुख बैन, मौखिक परंपरा, प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथावली। बहादुर सिंह द्वारा राजस्थान में रिकॉर्ड की गई कबीर वाणी में ब्राह्मणवाद विरोध का स्वयं मध्यम सुनकर विनांत साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मौखिक परंपरा में कबीर वाणी का ब्राह्मणीकरण हो गया। बहादुर सिंह द्वारा संकलित राजस्थानी लोक कबीर गायक ब्राह्मणवाद विरोधी पद गाने में इसलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि उनके स्पॉन्सर ब्राह्मण ही हैं। इन गायकों की अपनी पसंद, उनके अपने कबीर बोध का तो विनाद जैसे लोगों के लिए सवाल नहीं नहीं उठता। सो मौखिक परंपरा के कारण हुए ब्राह्मणीकरण से कबीर का उद्धार करने का बीड़ा विनान साहब ने उठाया और वे उस ऐतिहासिक कबीर की प्रामाणिक वाणी की खोज करने निकले, ऐसे जिसे एक तरफ तरह के ब्राह्मणवादियों ने आच्छादित कर रखा था, दूसरी तरफ डेविड लोरेंजन जैसे लापरवाह अध्येताओं अनुवादकों ने। ऐसे उद्धार का एकमात्र रास्ता यही है कि उन गीतों पर निगाह डाली जाए जो 1550 के आसपास लोकप्रिय थे और जिनके बारे में काफी संभावना है कि कबीर ने सचमुच उनकी लोकप्रियता को ही की होगी। 1550 की तो कोई पांडुलिपि मिली नहीं, लेकिन विनांत का यह मानना है कि कबीर के निधन 1518 के कोई 50 या 70 साल बाद की पांडुलिपियों में संकलित पद कबीर के 2-3 पीढ़ी बाद लोकप्रिय हो चुके पाठों और रूपों की सूचना देते हैं। यह भी सही है कि उन पदों का अधिक प्रामाणिक माना जाए तो एक से अधिक क्षेत्रों में प्राप्त संकलन के उपलब्ध में राजस्थानी परंपरा और आदि ग्रंथ के राग विभाजन पर ध्यान देते हुए विनांत को प्रलोभन होता है कि कहें कोई पद यदि इन दोनों स्रोतों में एक ही राग में रखा गया तो उनके एक बहुत ही आरंभिक मूल स्रोत में निकला होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्या वह स्रोत स्वयं कबीर हो सकते हैं? कबीर वाणी के उपलब्ध संस्करणों से और उनके आधार पर होने वाले कबीर अध्ययनों से विनांत काफी रुष्ट हैं। कहते हैं, कबीर के धर्म सिद्धांत, थियोलॉजी और साहित्यिक विशेषताओं या अनोखी भाषा के बारे में लिखने में आउटडेटेड लेख ही लिखे जा सकते हैं। इतनी पांडुलिपि सामग्री उपलब्ध हो जाने के बाद अब हम कबीर वाणी के प्रचलित संस्करणों पर निर्भर नहीं रह सकते। अपनी पुस्तक के 1974 वाले संस्करण की तुलना में 1993 में साखियों की संख्या घटाकर वादीवेल ने बहुत ही बुद्धिमता का परिचय दिया, लेकिन मेरा तो कहना है कि अभी हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी सभी प्राचीन पांडुलिपियों का उपयोग करते हुए और उनमें उपलब्ध मौखिक पाठांतरों के बारे में उपकल्पनाओं जिनका वर्णन विनांत कर चुके हैं का उपयोग करते हुए कबीर की रचनाओं का नया आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया जाना चाहिए। सुझाव वाकई अच्छा था। जाहिर है कि ऐसे नहीं आलोचनात्मक संस्करण के केंद्र में वही पद हो सकते हैं जो विनांत द्वारा अपनाई गई 1550 के आसपास लोकप्रिय होने की कसौटी पर खरे उतरे। विनांत ने कसौटी के तौर पर चुनी 10 पांडुलिपियां। बिहार से लेकर पंजाब और राजस्थान तक की चुनी गई पांडुलिपियां समूचे हिंदी में कबीर कृत मान्यता से संपन्न राज रचनाओं और पहचानने में सहायक होंगी। उनमें 1570 से 72 की गोयनवाल पोथियों से लेकर 1681 तक की पांडुलिपियां हैं। 10 पोथियां चुन लेने के बाद विनांत साहब ने प्रामाणिकता निर्धारण का स्टार सिस्टम अपनाया। संयोग से ऐसा 5-स्टार पद कोई न निकला जो 10 पोथियों में मिलता हो। सो यदि बिहार से लेकर पंजाब तक की पांडुलिपियां पोथी लेखकों की सर्वसम्मति को ही आधार बनाया जाए तो नतीजा यह है कि 1582 के पद सूरदास जी का संकलित 15 पदों से लेकर 2000 तक की कबीर मिलेनियम वाणी तक में संकलित 593 पदों में से एक भी कबीर का नहीं है। 10 में से 9 पांडुलिपियों में उपस्थित होने का सौभाग्य भी बस एक ही पद को प्राप्त है। इतने लोकप्रिय कवि की रचना संख्या का शून्य अथवा एक अकेले पद तक तो सीमित नहीं किया जा सकता। सख्ती आप कितनी भी बरते, विनांत ने उन पदों को 3 स्टार देने का फैसला किया जो आदि ग्रंथ और मोहन पोथी में कम से कम एक, पंचवाणी पांडुलिपि में कम से कम एक सर्वंगी और 1660 से 1669 तथा 1681 की पांडुलिपियों में पाए जाते हैं। ऐसे में विनांत के अनुसार बहुत आरंभिक कबीर कोर के सूचक और इसलिए बहुत प्रामाणिक है। इसके बाद 2 1-स्टार संपन्न और सर्वथा स्टार वंचित पद आते हैं। प्रामाणिकता का पदानुक्रम बन जाता था 3 स्टार से लेकर स्टार लेस तक। विनांत के कोर कबीर के ये 3 स्टार 48 पद आकारदिक क्रम में विनांत की मिलेनियम वाणी में उन्हें दिए गए क्रम के साथ इस प्रकार हैं। पहला, अपने बिचारी अवसारी कीजे 29। 2, अहो मेरे गोविंद तुम्हारा जोर 440। 3, इब मोहि नाचिबो न आवे 315। 4, एक अचंभा देसिया रे भाई। 5, एक सुहागनी जगत प्यारी 444। छठा ए जीव आई रे कहाँ गयो 325 सात ऐसा ज्ञान विचारी रे मना 410 आठ कहाँ करूँ कैसे तिरो 473 नौ काजी कौन कहते बसाने रे 53 दस काया मिंजे सी कौन गुना 338 ग्यारह कुशल शेष अरु सही सलामती 439 बारह चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे 363 तेरह चलन चलन सब लोग कहत 114 चौदह जागो रे नरसोवो कहाँ 413 पंद्रह जो मैं बोरा तो राम तोरा 402 सोलह झंगरा एक नबेरो राम 30 सत्रह डगमग छाड़ी देहू मन बोरा 127 अठारह तानना बूनना त्यज्या कभी 27 19 तेरो जन एक आध है कोई 204 20 नहीं छाड़ो बाबा राम नाव 459 21 निम्रल निम्रल रामम गुनम गावई 65 22 प्राणी लाल औसर चले रे 367 23 बाबा करहो कृपा जग मारगी 200 24 बोलना का कही रे भाई 95 25 भजी गोबियंद भूली जीनी 408 26 मन न डिगे ताते न डराई 398 27 मन रे भजियो न रघुपति राजा 312 28 मना रे राम सुमेरी रारा 381 29 माधव मैं ऐसा अपराधी 221 30 माया मोह मोही हित कीन 261 31 मूला करी लियो न्याव सुदाई 78 मेरी मेरी करता जन्म गयो 268 33 राम रामम चरणम जाके हृदय बस्त 448 34 रामम रस पाइया रे 92 35 रामम बिन संसार धंद कुहेरा 360 36 रैन गई जैस दिन भी जाई 416 37 लोका तुम ज कहत हो नंदन 172 38 लोका रे मति के भोरा रे 486 39 संतो आई ज्ञान की आंधी रे 224 40 संतो धागा टूट गगन बिनसी 34 41 संती राम सदगुर की सेवा 406 42 सार सूस पाई रे 372 43 हम न मरे मरे हैं संसारा 41 44 हरि के साढ़े बढ़े पकाए 12 45 हरि को नाऊ न लेहूं गवारा 310 46 हरि की बिलोवनो बिलोई मेरी 419 47 हरि जननी मैं बालक तेरा 121 48 हरि ठग जग को ठगौरी लाई 97 इन 48 पदों में कबीर एक अंतर्मुखी आत्मलीन साधक के रूप में सामने आते हैं जो सामाजिक स्थितियों पर थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी जरूर करता है लेकिन ऐसे कटुक वचन सुनाने का जिसका तन मन कतई नहीं कि सुनत आग लग जाए। इन पदों में दार्शनिक चिंतन चाहे तो आप इसे रहस्यवाद कह लें, माया और नश्वरता पर विचार है। अपनी माँ से लेकर अपने राम तक के साथ भाव भीनत संवाद, नाराज और दुखी माँ को बताने की कोशिश है कि बेटे की मुंडियों वैष्णवों से क्यों बनती, उलट बासियां 12 और 15 हैं, भक्त सुलभ व्याकुलता और गुरु की प्रति कृतज्ञता और आत्मसन्ना भी है। जीवन के आरंभिक वर्षों में व्यर्थता का बोध तो अत्याचार सहने पड़े, उनकी स्मृति और बचाने वाले राम के प्रति कृतज्ञता है। जात जुलाहा मति का धीर होने की सूचना के साथ ही आत्मविश्वास है कि कहे कबीर में पूरा पाया, पूरे पन में उत्पन्न रहने पर जोर है, जिसके बिना तीर्थादि व्यर्थ है। तुम भी 68 तीर्थ नहाई, कड़वापन तउ न जाए 328 वैष्णव परंपरा में बहुमान्य प्रहलाद चरित 459 प्रहलाद चरित अकेला ही नहीं, वैष्णव शब्दावली और मान्यताएं इन पदों में पंक्ति पंक्ति में है। इन सबके साथ अंत समय निकट आता देख कवि कंठ से फूटी मार्मी कविता है कही कबीर यह कथा सिरानी काग उड़ावत बाह पिरानी 416 काशी को मोक्ष की गारंटी मानने का प्रतिवाद राम ही कौन निरहोरा 486। जहां तक उस तरह के आक्रामक ब्राह्मणवाद विरोध की बात है तो कुछ महानुभावों को कबीर में एकमात्र काम की चीज लगती है वह पद सूरदास जी का। कि 15 पदों के ही तरह इन 48 पदों में भी न के बराबर ही हैं। आक्रामक चुनौती का स्वर तो काजी के प्रति है। काजी से तो कवि सीधे सीधे कह रहे हैं कि किताब छोड़ राम कह। कबीर द्वारा भक्त की राह अपना लेने पर क्रुद्ध काजी झक मारता रहे, कबीर को परवाह नहीं। जोहर सुदाह तुरक मुही करता तो आपे किन काटे जाई, हूँ तो तुरक किया कर सुनत औरत क्यों कहिए। अर्ध शरीरी नारी न छूटे आधा हिंदू रहिए, छाड़ी कीर्तव राम कहीं काजी सुन करत है भारी, पकड़ी टेक कबीर भक्ति की काजी रहे झस 53। इन पदों में परम तत्व के वेद कतेब देहू से न्यारा होने की घोषणा 29, तो साथ ही यह भी है कि झूठे वेद कतेब नहीं बल्कि वे लोग हैं जो विचार नहीं करते 78। यह विनम्र कथन है कि पढ़ने गुणने से जो मति लोगों को प्राप्त होती है मैंने सहज ही हासिल कर ली। अब क्या वेद कुरान पढ़ना, क्या सुनना। 310। बाह्याचार का खंडन इक्का दुका पंक्तियों में ही है। देव पूंजी पूंजी हिंदू मुए तुरक मुए हजी जाई 360 और का जटा भसन लेपन किए कहां गुफा में बास 372। केवल प्राचीन पांडुलिपियों को ही प्रमाण मानते हुए पाठ निर्धारण में काफी शक्ति बरतते हुए और इस शक्ति के बाद प्राप्त कबीर को ही आधार मानते हुए तथा कबीर को थियोलॉजी साहित्यिक विशेषताओं और अनोखी भाषा पर विचार करने की विनांदीय निर्देशों पर अमल करते हुए पूछा जा सकता है कि विनांद द्वारा निर्धारित कूर कबीर में ऐसा क्या है कि काशी के ब्राह्मण मुल्लाओं के साथ मिलकर माई बाप सिकंदर के दरबार में जा पहुंचे। इस जुलाहे को ठीक कीजिए। काजी मुल्ला की तो बात फिर भी समझ में आती है। विनांद साहब की शक्ति से निर्धारित 3 स्टार कबीर पाठक में ब्राह्मणों की तिलमिला देने वाली तो कोई बात ही नहीं। फिर तुलसीदास निर्गुण पंथियों पर इतना कोप क्यों कर रहे थे। यह भी दिलचस्प है कि जिन अनंत दास के इतिहास बोध पर विनांद साहब को तरस आता है, जो विनांद साहब को कबीर की ब्राह्मणीकरण करने पर उतारू दिखते हैं, यह किस्सा आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। उन्हीं अनंत दास की जुबान से हम कबीर के बारे में पिछले अध्याय में सुन चुके हैं कि निंदई भाव बाभन जग आराध्य। क्या मजे की बात है कि स्टार सिस्टम से अनवगत अनंतदास तो अपने पाठकों को बता रहे हैं कि सिकंदर में हुजूर में कबीर पर आरोप लगाया था, नीत है तीरथ नींद वेदु नींद नवग्रह सूरज चंदु और स्टार सिस्टम की कसौटी पर खरे उतरे कबीर में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ब्राह्मणवाद विरोध की भंगिमा धारण करने वाले आधुनिक विद्वानों में ग्रंथावली को पाठ को वैष्णवीकृत और ब्राह्मणीकृत कहकर खारिज कर देने का इन दिनों काफी फैशन है। पूछा जा सकता है कि जब 1550 के आसपास लोकप्रिय इन 3 स्टार पदों में इतना वैष्णव परिवेश है तो ग्रंथावली के वैष्णव कबीर से क्यों परेशानी होनी चाहिए। पूछा तो यह भी जा सकता है कि कबीर की ब्राह्मणीकरण द्विवेदी जी कर रहे थे या कोर कबीर को इन 48 पदों तक सीमित करने वाले मौखिक परंपरा से प्राप्त पदों के आधार पर कबीर पर लिखने के कारण डेविड लोरेंजन की बुद्धि पर तरस पाने वाले सारी की सारी मौखिक परंपरा को ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में बताने वाले विनांद कैलवर्ट स्वयं यही कह रहे थे। असल में विनांद कबीर का विचार धारात्मक उपयोग करने की ऐसी हड़बड़ी है कि खुद अपने कोर कबीर से निकलने वाले निष्कर्ष को खुद ही अपेक्षा कर देखते हैं। कोर कबीर के 48 पद वैष्णवता से कवि के संबंध का अकाट्य प्रमाण दे रहे हैं, साफ दिखा रहे हैं कि वैष्णव होना और ब्राह्मणवादी होना पर्यायवाची नहीं, परस्पर विरोधी है, लेकिन विनांद है कि देखने को राजी ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अपने प्रोजेक्ट की ऊंचाई से ही दी गई प्रामाणिकता संबंधी विनांद की श्रेष्ठ सलाह खुद उनके काम से प्रसंग में श्रेष्ठ के साथ साथ रोचक और मनोरंजक भी हो जाती है। एक सलाह मेरी भी है, किसी भी देश देशज में, खासकर ऐसे समाज में जहां श्रुति को इतना महत्व दिया जाता हो, जहां गुरु के तथा अन्य कई प्रकार के वचनों को लेखबद्ध संकोच के साथ ही किया जा सकता है, वहां मौखिक परंपरा को हकारत से देखना और लेखबद्ध श्रुतों को पूज्य सामान लेना बुद्धिमता का परिचय देना नहीं है। यह सलाह तो अपनी जगह है ही कि याद रखा जाए कि बुद्धि विवेक यूरोप के बाहर भी पाया जाता था, पाया जाता है। खैर, विनांद तुलना करते हुए बताते हैं कि उनके द्वारा 1570 में से 1681 तक की पांडुलिपियों के आधार पर संकलित 593 कबीर पदों में से केवल 32 पद या इनकी कुछ पंक्तियां ही सुखदेव सिंह द्वारा संपादित बीजक में मिलते हैं। बीजक में कुल पद 115 हैं। विनांद नोट करते हैं कि सुखदेव सिंह द्वारा बरती गई बीजों पांडुलिपियों में प्राचीनतम सन 1805 की है। आदि ग्रंथ में संकलित 221 पदों में से 132 ही वेदांत की पांडुलिपियों में मिलते हैं। दूसरी ओर ग्रंथावली में श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित संस्करण के कुल 403 पदों में से 396 ऐसे हैं जो वेदांत की पांडुलिपियों में भी मौजूद हैं। श्याम सुंदर दास द्वारा आधार बनाई गई प्राचीनतर पांडुलिपि की पुस्तिका के आधार पर उसे संदिग्ध ठहराया जाता रहा, लेकिन वेदांत का कहना है कि यह राजस्थानी पाठ की महत्वपूर्ण पांडुलिपियां तो निश्चय ही है, शायद 1620 के आसपास की हो। माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित ग्रंथावली का पाठ श्याम सुंदर दास की ग्रंथावली सरीखा ही है, बस 403 से 19 पद फुट नोट में दिए गए हैं, क्योंकि वे माता प्रसाद जी द्वारा आधार बनाई गई प्रेमदास उत्तराधा लिखित पांडुलिपि 1705 ईस्वी में नहीं मिलते। माता प्रसाद जी ने इस पांडुलिपि को आधार बनाया है, वह संभवतः बनारसी दास उत्तराधा द्वारा तैयार की गई थी। इसमें 810 सखियां और 384 पद संकलित हैं। बनवारी दास दादू जी के ही शिष्य थे। इनके शिष्य थे गंगाराम और उनके शिष्य थे प्रेमदास उत्तराधा, जिन्होंने अपने दादा गुरु द्वारा तैयार किए गए संकलन की वह प्रतिलिपि से 1762 विक्रम संवत 1705 ईस्वी में तैयार की गई, जिसे माता प्रसाद जी ने अपनी ग्रंथावली का आधार बनाया। माता प्रसाद गुप्त बताते हैं बनवारी दास के निवार तिथि संवत 1700 से है, जो उपर्युक्त 1762 की प्रति के अंत में दी गई है, किंतु दादू जी के समस्त वाणी ठीक ठीक उसी क्रम से अंगों में विभाजित हैं जिस क्रम में कबीर की वाणी इस पाठ में है, और दादू जी का निर्वाण संवत 1660 इसलिए कबीर वाणी का यह पाठ संवत 1625 से 30 के आसपास का हो तो आश्चर्य न होगा। प्रेमदास उत्तराधा की पांडुलिपि आगरे के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी संस्थान के संग्रह से क्रमांक 992 में सुरक्षित है। इसमें बनवारी दास की ही नहीं, दादू जी, गरीब दास और गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु अमर जी की भी निर्वाण तिथियां सही सही दी गई हैं। इसमें केवल कबीर वाणी ही नहीं, रामानंद के तीनों प्रसिद्ध पद भी संकलित हैं। इस तथा ऐसी अनेक पांडुलिपियां देखकर लगता है कि संतवाणी के संकलन को जैसे दादू पंथ ने अपने साधना का अंग ही बना लिया था, वह संकलन साधना दादू पंथी संतों ने विभिन्न संतों की अप्रोप्रिएट करने के इरादे से नहीं की थी। यह बात हर इस व्यक्ति को दिख जाएगी जो स्वयं कबीर और अन्य आवाजों को अप्रोप्रिएट करने के चक्कर में न हो। दादू पंथी साधक स्मृति को लेख तक ले जाने का काम सच्ची निष्ठा से कर रहे थे। यह बात समूचे भारतीय संस्कृति अनुभव में साजिशें भर सूंघते रहने वालों की याद रखनी चाहिए। दादू पंथ तो दादू पंथ, वृंदावन शो संस्थान वृंदावन में सुरक्षित ठेठ पुष्टमार्गी पद संग्रह पांडुलिपि संख्या 1134 में कबीर का फर्णाश्रम विरोधी कबीर पंजस का तस विद्यमान है। पुष्टमार्गी ब्राह्मणवादी संकलनकर्ता ने कबीर के ब्राह्मणीकरण का कोई प्रयास नहीं किया है। माता प्रसाद जी द्वारा रेखांकित दादू वाणी और कबीर वाणी के एक के अंग विभाजन से मिलने वाला संकेत वाकई ध्यान देने योग्य है। अपने गुरु दादू जी के जीवन काल में ही बनवारी दास ने यदि सचमुच अपना संकलन तैयार किया था तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। श्याम सुंदर दास द्वारा उल्लिखित पहली पांडुलिपि, जिसे संवत 1561 विक्रम 1504 ईस्वी को समझ रहे थे, वेदांत के अनुमानानुसार सन 1620 ईस्वी के आसपास की हो सकती है। बनवारी दास की पांडुलिपि से संवत 1625 से 30 सन 1568 से 73 की चाहे न भी हो, वीनांद द्वारा 1620 के आसपास की मानी गई पांडुलिपि से उनकी इतनी समानता ध्यान तो खींचती है, इस दिशा में और खोजबीन की आवश्यकता तो रेखांकित करती है, तो नतीजा यह निकला कि 1570 से 1681 तक के बीच जो 593 पद किसी न किसी स्तर तक किसी न किसी क्षेत्र में कबीर कृत होने की मान्यता हासिल कर चुके थे, उन्होंने 396 वैष्णवी कृत ग्रंथावली में मौजूद है, वेदांत के अनुमान के अनुसार ही चले और श्याम सुंदर दास की पहली पांडुलिपि को 1620 की माने तो क्या यह संभव नहीं है कि 593 से 396 बराबर 197 पद कबीर वाणी में 1620 से 1681 के बीच ही जुड़े हों। यह मेरा अनुमान है कि आग्रह नहीं, मुद्दे की बात यह है कि वेदांत को के 197 पद ग्रंथावली में नहीं मिलते। यह भी संभव है कि इनमें से कई के कबीर कृत होने में ग्रंथावली के मूल स्रोतों को संदेह रहा हो, इसलिए उन्हें शामिल न किया गया हो। खैर, इन सवालों पर फिर भी कभी खोज करेंगे, तब कुछ कहेंगे। अभी तो यह देखें कि बीजक के 115 में से 32, आदि ग्रंथ के 221 में से 132 यानी क्रमशः एक तिहाई से भी कम और लगभग 55% की तुलना में ग्रंथावली के 403 में से 396 का मतलब हुआ 90% के आसपास। यही नहीं, कबीरवाणी की थीम्स के अनुसार लिहाज से भी ग्रंथावली का पाठ विनान साहब के 3-स्टार कोर कबीर पदों, 2 तथा 1-स्टारलेस पदों में व्यक्त भावनाओं तथा विचारों को यानी कबीर के व्यक्तित्व को विश्वसनीय ढंग से धारण करता है। साथ ही मौखिक परंपरा के पदों और किंवदंतियों में झलकने वाली कबीर छवि का भी संतुलित आभास देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रंथावली में कबीर की एकायामिक छवि उभारने को कोशिश बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। इसमें कबीर कंप्यूटर आए रोबोट के रूप में नहीं, संवेदना के विविध स्तरों से संपन्न मनुष्य के रूप में आपके सामने आते हैं। मशीनी ढंग की सुसंगति, कंसिस्टेंसी नहीं, मानवीय आत्मसंघर्ष और संवाद ही ग्रंथावली के कबीर की पहचान है। पाखंड खंडन और वर्णाश्रम विरोध के विवादमूलक पद भी, उलट बांसियां भी, रसपूर्ण प्रेम और नारी रूप धारण के पद में भी और नारी निंदा के भी, योग परक पद और उलट बांसियां भी हैं और वैष्णव प्रतीकों, कथाओं और मान्यताओं में रंजित पद भी। ग्रंथावली में ऐसा नहीं है कि सामाजिक आलोचना है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कटुक वचन ही भरे हों। मेरे छात्र अमिश वर्मा द्वारा 2006 के लिए दिए गए असाइनमेंट के अंतर्गत बनाई गई श्याम सुंदर की ग्रंथावली के पदों की थीम्स की सूची इस प्रकार है। प्रेम के पद 37, विवाद मूलक पाखंड विसर्जन के पद 64, योग परक पद 44 और वर्णाश्रम खंडन के पद 8। अमीश के सहपाठी शीतांशु कुमार ने प्रेम के पदों के साथ यह भी गणना की है कि कितने पदों में प्रेम की चर्चा है। भले ही प्रेम की थीम वहां न हो और पाया कि 37 प्रेम पदों के अलावा ऐसे 38 पद हैं और हैं। शब्द प्रयोग पर ध्यान देने से इन युवा अध्येताओं को पता चला कि गुरु शब्द वाले 84 पद हैं तो कृष्ण तथा इस शब्द के पर्यायवाची गोविंद, कान, केशव, मुरारी, नटवर, बनवारी, माधव, गोपाल, गोवर्धन वाले पद हैं 63। राम और भाव भगति शब्दों वाले पदों की गिनती करने की जरूरत नहीं है, कबीर वाणी में इसकी व्याप्ति सर्वज्ञात है। अमिश ने बीजक में भी थीम्स की गणना की और निम्नलिखित सूची बनाई। प्रेम के पद 6, विवाद मूलक पाखंड खंडन के पद 25, योग परक पद 11, वर्णाश्रम खंडन के पद 10। प्राचीन पांडुलिपि प्रतिमान पर ग्रंथावली का पाठ स्वयं विनांत कैलवर्थ की गणना के अनुसार बिल्कुल खरा उतरता है, यानी 1693 में कबीर साखियों की संख्या घटाकर बुद्धिमता का परिचय देने वाले सार्लोत वादिवेल से अधिक बुद्धिमता और संवेदनशीलता का परिचय ग्रंथावली तैयार करने वाले दे रहे थे। यानी कबीर की मिलेनियम वाणी प्रस्तुत करने की धूमधाम में वंचित बाबू श्याम सुंदर दास सन 1928 में ही इस दिशा में चल रहे थे। यानी कबीर पर विचार विमर्श का आधार ग्रंथावली को बनाने का ऐसा कोई हर्ज नहीं, यानी कबीर की रचनाओं का नया आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने के महत्वपूर्ण अनुष्ठान में इतनी पांडुलिपि सामग्री उपलब्ध हो जाने के बाद अब हम प्रचलित संस्करणों में से कम एक यानी ग्रंथावली पर तो निर्भर रह ही सकते हैं। ग्रंथावली में कुल पद है 403 और बीजक में है 115। इस लिहाज से ऊपर गिनी गई थीम्स में से बीजक का बल विवाद मूलकता पर निश्चय ही थोड़ा अधिक है, लेकिन इसके आधार पर बीजक को प्रतिमान बनाकर ग्रंथावली को वैष्णवीकृत बताने का अर्थ होगा 1570 से लेकर 1681 तक की पांडुलिपियों पर 1805 की पांडुलिपि की वरीयता देना। ऐसी स्थिति में पांडुलिपि प्रमाण्य का क्या होगा? बीजक के पाठ से जुड़ी समस्याएं और भी हैं, इसलिए बीजक इकलौता प्रतिमान बनाने के लालच से बचने की समझदारी है, और मौखिक परंपरा के प्रसंग में शक्ति के साथ ही थोड़ा विवेक, थोड़ी संवेदनशीलता भी अपनाने की समझदारी है। पांडुलिपि पांडित्य के साथ कबीर की बात को संतुलन बैठाने में ही समझदारी है। जैसे जेते पात वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित बिचारा क्या करे कबीर कही मुख बैन। माया मोहिनी मोहे जान सुजान, कैसे करें पाठ निर्धारण और कैसे न करें। औपनिवेशिक आधुनिकता ने पकड़ा मसी कागज छूयो नहीं की और मान लिया कि कबीर निरक्षर थे। कल्पना करने तक से इनकार कर दिया कि यदि कबीर ने सचमुच कुछ नहीं लिखा तो कारणता निरक्षरता के सिवाय और कुछ भी हो सकती है। मसलन लिखकर नाम कमाने से विरक्ति नित्यानंद तिवारी ने कुछ ही दिन पहले दिए सत्य प्रकाश मिश्र स्मृति व्याख्यान में भक्ति काव्य की विचारधारात्मक निर्मितियों की चर्चा की है। वाणी के प्रत्यक्ष संवाद जनित प्रभावोत्पकता को बनाए रखना ऐसे ही निर्मितियों में से एक है। संभव है कि लिखने से कबीर की विरक्ति का कुछ संबंध इस विचारधारात्मक निर्मिति से भी हो। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पढ़ने के प्रति जगह जगह विरक्ति और संदेह प्रकट करते हुए कबीर सुनने का न्योता बारंबार देते हैं। इस न्योते का संबंध उनकी साधना पद्धति विचारधारात्मक निर्मिति से है। कबीर को निरक्षर अशिक्षित बौद्धिक विमर्श में वंचित मानने वाली औपनिवेशिक आधुनिकता के विपरीत देशज आधुनिकता और भक्ति के लोकप्रिय ने ध्यान दिया। सात संबंध की मसी करो पर और कबीर के नाम को ऐसे स्पेस में बदल दिया जिसमें बहुत से कवि अपनी रचनाएं कबीर को अर्पित कर सकें। ऐसी रचनाओं को हम कबीर की उपरचना कह सकते हैं। उपरचनाओं को कबीरा अर्पित करने की अपनी मर्यादा थी, प्रतिमान थे, यह तय है कि मैंने कि कौन सी उपरचना कबीर नाम के अवकाश में जगह पाएगी, कौन सी नहीं। उपरचनाओं का ही नहीं कबीर की अपनी रचनाओं का भी मूल स्रोत है मौखिक परंपरा। यह फैसला पहले उसी परंपरा में होता है कि कबीर अवकाश में कौन सी जगह पाएगी, कौन सी नहीं। इसके बाद ही कोई रचना लेखबद्ध होकर पांडुलिपियों में पहुंचती थी। यह पद्धति कबीर और तुलसी के समय में भी जारी थी और आज भी जारी है। कुछ पांडुलिपिकार संकलन के लिए विचारधारात्मक सीमाएं बांध देते हैं तो कुछ ऐसी सीमाओं की परवाह किए बिना वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों के आधार पर संकलन करते थे। इस वैज्ञानिकता वस्तुनिष्ठता के कारण ग्रंथावली कबीर रचना के सबसे विश्वसनीय स्रोत है और इसीलिए किसी भी रचना के प्रसंग में पांडुलिपियों को बस पढ़ लेने से काम नहीं चलता, उन्हें व्यापक संदर्भ में समझना भी पड़ता है। 1574 में तुलसीदास जब अपनी वेदना कह रहे थे कि कलयुग में शूद्र ब्राह्मणों को आंख दिखाते हैं, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख ही दिखाव ही डांटी, तब वे कबीर के नाम से उपलब्ध रहे और कथन को ही उद्धृत कर रहे थे। कहू कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्रह्मणु कहो तो है हमारे, यह पद विनांद की मिलेनियम वाणी में 509वां पद है, लेकिन चूंकि वह केवल एक स्रोत आदि ग्रंथ में मिलता है इसलिए यह विनांद के स्टार सिस्टम के स्टारलेस पदों में से है। जब कोई पंचवाणीकार या सर्वांगीकार कबीर या अन्य कवियों की रचनाएं लेखबद्ध करता था तो मौखिक रूप से सुलभ पदों में से किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, किसके कुछ प्रतिमान अपनाए जाते हैं। शब्दों का मौखिक से लिखित में अवतरण अलप टप्पू ढंग से नहीं, अनुशासन बद्ध ढंग से ही होता है। जरूरत उस अनुशासन को साजिश और बुद्धूपन सरीखे बीज शब्दों के मोह से मुक्त होकर समझने की है। पंचवाणीकारों और सर्वांगीकारों से भिन्न आदि ग्रंथ और बीजक के संकलनकर्ताओं के अपने वैचारिक उद्देश्य थे और अपनी संपादकीय विधियां जरूरत इन उद्देश्यों और विधियों को समझाने की भी है। आदि ग्रंथ में इस समय उपलब्ध सभी कवियों की सभी रचनाएं संकलित नहीं की गई है, बल्कि उन्हीं रचनाओं को स्थान दिया गया है जिनसे सिख मत के वैचारिक उद्देश्यों की पुष्टि मिलती है। ठीक यही स्थिति बीजक में कबीर की रचनाओं के साथ है। ऐसी स्थिति में पाठ निर्धारण की विधियां क्यों हो सकती हैं? सबसे पहली बात यह है कि ध्यान रखा जाए कि कबीर की रचनाएं मौखिक और लेखबद्ध के मुखामुखम में ही स्थित हैं और वहीं से लोगों को आज तक प्राप्त हो रही हैं। कुमार गंधर्व और मधुप मुतकल या प्रहलाद सिंह टिपानिया, हरिलाल यादव और मुख्तियार अली, ये सभी गायक अपने कबीर को पोथियों से पहले मौखिक परंपराओं के जरिए पाते और गाते हैं। लेखबद्ध कबीर वाणी और मैन्यूस्क्रिप्ट स्कॉलर्स के काम के प्रति पूरे सम्मान के साथ ही यह कहना जरूरी है कि कबीर के प्रसंग में पांडुलिपि की उपलब्धता को एकमात्र प्रतिमान नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तानी गायक फरीद अयाज अपने कबीर स्रोत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए जो मौखिक परंपरा को गंभीरता से लेने के कारण टैगोर, क्षितिमोहन सेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डेविड लोरेंजन के प्रति रोष का इजहार करते रहते हैं। उसका नाम शमशेर था। वो रोटी पैदा करने के लिए गधा गाड़ी चलाते थे, लेकिन उनके पास कबीर का इतना कलाम था। एक मर्तबा मैंने उनको सुना था, यहीं सड़क के ऊपर वे एक छोटे से ढोलक पर गाने लगे। उस वक्त मेरी उम्र काफी छोटी थी, 10 या 11 साल, लेकिन मैंने जब उनसे कबीर को सुना तो मेरी आंखों में आंसू रवाना होने लगे। फिर कबीर की मोहब्बत जागी। उनसे कबीर को मैंने अपने अंदर भरा, सुना, समझा, एक ऐसे आदमी से जो दुनिया की नज़र में गधा गाड़ी चलाने वाला था। कबीर की समझ आपको विद्यालयों, विद्वानों और प्रोफेसरों से नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको कबीर के पास जाना पड़ेगा और वह तमाम बंधनों को तोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने स्क्रिप्ट स्कॉलर्स को उन दादूपंथी, निरंजन पंथी और अन्य पांडुलिपिकारों के एक स्थान के साथ जाना चाहिए जिन्होंने कबीर ही नहीं और भी अनगिनत लोगों को कलाम हमारे लिए सुरक्षित रखा। उनकी विधियों और उनमें अंतर्निहित विवादों को ध्यान में पढ़ना चाहिए। दादू पंथ जैसे पंथों में संतों की वाणी, मगजी स्मृति संरक्षित और कागजी लेखबद्ध दोनों तरह के स्रोतों के माध्यम से सजाई जाती थी। दादूपंथी स्रोतों को यानी ग्रंथावली परंपरा का अद्वितीय महत्व इस बात में यह है कि यह परंपरा कबीर की रचना को बिना किसी आइडियोलॉजिकल सेंसरशिप की संरक्षित कर रही थी। पंथ दादू का था, लेकिन कबीर के प्रति स्वयं दादू के मन में असीम सम्मान और कृतज्ञता थी। इसलिए जरूरी था कि कबीर वाणी का संकलन सावधानी से किया जाए। संकलन करते समय कबीर वाणी को दादू पंथी मान्यताओं की छलनी से नहीं गुजारा गया, उसकी अपनी विशिष्ट आवाज को ही सुरक्षित रखा गया। इसलिए ग्रंथावली के कबीर कटे छठे कबीर नहीं, पूरम पूर कबीर हैं। रजब दास के सर्वंगी और जगन्नाथ दास के गुड़ गंजनामा के बारे में गोविंद रजनीश ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। संभवतया संग्रह के इस परंपरा का श्रेय दादू दयाल को जाता है। संवत 1660 से 1604 ईस्वी में उनका निधन हुआ। इससे पूर्व सर्वंगी और गुड़गंजनामा को देखकर संतुष्ट हो चुके थे। अपने कथन की पुष्टि में रजनीश के फुटनोट में साखी दी है, रज्जब रचित शास्त्र सर्वंगी सबसार, गुरु दादू की दृष्टि सौ नीर छीर सुविचार। बात शब्दशः तथ्यात्मक न हो तो भी दमदार है। गुरु दादू की दृष्टि सौ का आशय स्वयं दादू ने पाठ मंजूर किया, यह न होकर यही हो कि संकलन दादू दृष्टि से किया गया है, तब भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि तब शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण एक तो यह है कि दादू दृष्टि वर्णाश्रमवादी दृष्टि नहीं, कबीर की ही तरह की दृष्टि है। दूसरे यह कि दादू या स्वयं दादू को कोई दिलचस्पी कबीर पंथ के आंतरिक विवादों में नहीं है। उन्हें इन विवादों के अनुरूप कबीर वाणी को ढालने की कोई दिलचस्पी होने का सवाल ही नहीं। पंथी आग्रहों से मुक्त कबीर संवेदना के प्रति संवेदनशील और मगजी कागजी विधियों के मुखामुखम में ही स्थित होने के कारण ग्रंथावली का पाठ सर्वाधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक है। इस पाठ को ब्राह्मणवादी एप्रोप्रिएशन कहने वाले को यह भी कहना चाहिए कि मुख्यतः किसानों, दस्तकारों और व्यापारियों जाति की ही शब्दावली में कहें तो दलित और पिछड़े जातियों को आकांक्षाओं, कल्पनाओं और असंतोष की वाणी दे रहा दादूपंथी ब्राह्मणवादी पंथ था। उन्हें यह भी कहना चाहिए कि सर्वंगी में भक्ति विमर्श का अनमोल संकलन करने वाले इस संकलन में तुलसीदास और भर्तृहरि, जी हाँ भर्तृहरि की भी कम से कम एक एक रचना को जगह देने वाले भक्ति के लोकृत में हुई बौद्धिक गतिविधियों का अत्यंत विचारोत्तेजक रिकॉर्ड छोड़ जाने वाले भक्ति को जात पात की परवाह किए बिना पार उतारने वाले ले, जहाँ ज्यों बोथिय बुझे नहीं कोई बरन बिचारा कहने वाले रज्जब या पठान भी ब्राह्मणवादी थे। दादू अकबर बादशाह के समकालीन थे। किंवदंतियों के अनुसार बादशाह उनका सम्मान भी बहुत करते थे, लेकिन दादूपंथी संकलनकर्ता जानते थे कि कबीर मुगलों के आने से पहले समा चुके थे और किसी कबीर पद में मुगल शब्द यदि हैं तो मगजी परंपरा में अब उसके सम्मान और लोकप्रियता के बावजूद इसे कागजी रूप में न देना ही अच्छा। यही कारण है कि अपने परदादा गुरु बनवारी दास के संकलन का भी प्रतिलिपि 1705 ईस्वी में तैयार किए रहे प्रेमदास उत्तराधा ने एक भी ऐसा शामिल नहीं किया, एक भी पद ऐसा शामिल नहीं किया जिसमें मुगल शब्द आता हो। लेकिन इस सावधानी का अर्थ मगजी व्याप परंपरा की अवज्ञा करना नहीं था। लोक जीवन में आज तक ऐसे पदों को मान्यता प्राप्त है जो मगजी परंपरा में ही सुरक्षित रह सके हैं। बात केवल मुगल शब्द के व्यंजित होने वाले तथा अन्य प्रकार के कालक्रम दोष की ही नहीं, और भी कारण हो सकते हैं किसी पद के मगजी से कागजी तक न पहुंच पाने के। मगज में बैठाने की बात यह है कि महज कागजी के अनुपलब्धता के आधार पर किसी पद की प्रामाणिकता को खारिज करना ठीक नहीं। सवाल उठता है कि फिर क्या जो कुछ कबीर के पास प्रचलित है सबका सप्रामाणिक मान लिया जाए। खुलेपन के बावजूद कुछ तो मर्यादा रेखाएं होंगी जिनके आधार पर हम किसी रचना को कबीर कृत माने और किसी को नहीं। सवाल एकदम जायज है लेकिन अभूतपूर्व बिल्कुल नहीं। पाठ निर्धारण की समस्या औपनिवेशिक आधुनिकता के ही समान नहीं आई थी। उसने तो अन्य समस्याओं की तरह इसे भी सुलझाने की बजाय उलझाने में ही ज्यादा योगदान दिया। प्रामाणिकता का सवाल देशीय आधुनिकता में भक्ति के लोकवृत्त में विमर्श कर रहे लोगों के सामने भी था। हम उन प्रतिमानों से भी काफी कुछ सीख सकते हैं जो उन लोगों ने कोर कबीर निर्धारित करने के लिए अपनाए। इन प्रतिमानों में कबीर के मानव व्यक्तित्व के समग्रता के प्रति संवेदनशीलता के साथ ही वे मर्यादाएं खींची गईं जिनके बाहर जाने वाली रचना को कबीर कृत नहीं माना जाएगा। ये मर्यादाएं पंथी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए खींची गई सीमा रेखाओं से एकदम अलग किस्म की थी। भक्ति के लोकवृत्त में संवाद विवाद कर रहे लोग कबीर के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व कवित्व की उन विशेषताओं से वाकिफ थे जिन्हें सबसे सटीक और अभिव्यक्ति नाभा दास ने दी है। पिछले अध्याय में पढ़ा नाभा दास का पद याद करें। कबीर एक नए प्रकार की आध्यात्मिकता का प्रस्ताव कर रहे थे। धर्म को भक्ति का निर्धारक नहीं बल्कि भक्ति को धर्म के प्रतिमान मानते थे। भक्ति विमुख जो धर्म सु अब अधर्म करी गए। कबीर के लिए न तो वर्णाश्रम की तरह करना कोई पाप था और न ही पारंपरिक दर्शन जिसके तस माने थे। कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी, मुंह देखी बातें करना उन्हें नहीं सुहाता था, मुख देखी नाहीन भनी। इन तीनों प्रतिमानों पर खरी उतरने वाली रचनाएं ही भक्ति के लोकवृत्त में कबीर कृत मानी गई हैं। उस लोकवृत्त से जुड़ी परंपरा से आज तक मानी जाती हैं। टिपानिया से लेकर फरीद अयास तक इन्हीं प्रतिमानों पर जांचते हैं कि रचना कबीर की मानी जा सकती है या नहीं, भले ही वह किसी प्राचीन पांडुलिपि में मिलती हो या न मिलती हो। आरंभिक आधुनिकता में मगजी और कागजी के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश की थी तो औपनिवेशिक आधुनिकता को कागजी का खब्द ऑब्सेशन में एकदम ऑथेंटिक कॉन्स्टेंट पाठ हासिल करने के लिए ऑब्सेशन की जड़ें बाइबिल के पाठ निर्धारण बल्कि निर्माण की परंपरा और स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं। इस विषय का विस्तार यहाँ करना आवश्यक है नहीं, इतना ही कहना कि बाइबिल के प्रामाणिक पाठ कैनन का निर्माण इसी ईसा मसीह के निधन के कोई सौ साल बाद आरंभ किया गया और चार सदियों तक चलता रहा। आज जिसे बाइबिल का चर्चा स्वीकृत कैननाइज्ड पाठ माना जाता है उस चर्च की अंतिम स्वीकृति 393 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर में हुई पादरियों की सभा सिनोड के बाद ही मिली, जिन गॉस्पेल्स को ईसा मसीह के समकालीन साथियों द्वारा रचित माना जाता है वे वस्तुतः ईसा के निर्वाणोपरांत लिखे गए संस्मरण हैं। उनकी अब उपलब्ध पांडुलिपियां और भी बात की हैं। चर्च का अर्थ होता है मंडली। इस अर्थ में ईसा और उनके साथी चर्च थे। ईसा के बाद कुछ लोगों को लगा कि इस मंडली को संगठित संस्थाबद्ध पदानुक्रम युक्त धर्म संगठन में बदला जाए और सारी दुनिया को इसके ताबे लाया जाए। ईसा के अनेक साथी ऐसे चर्च स्थापित करने के विरुद्ध थे, इसीलिए ईसाई समूहों को शुरू से ही मतभेद और संघर्ष आरंभ हो गए। दूसरी ओर शुरुआत में रोमन सत्ता द्वारा उत्पीड़ित होते रहे चर्च की सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ही 383 ईस्वी में ईसाइयत को अपना लिया। अब चर्च को राजसत्ता का समर्थन प्राप्त था और वह अधिकाधिक ईसाइयत का मनमाना निर्माण कर सकता था। अब घोषित किया गया कि ईसा की प्राथमिक दिलचस्पी अधिकाधिक ईसाइयत का मानना निर्माण कर सकता है। ईसा की प्राथमिक दिलचस्पी बल्कि परमात्मा द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी हो। और मिनिस्ट्री ही यह थी कि नए धर्म की स्थापना करें, आत्मानुसंधान, नैतिक जीवन और प्रेम के आग्रही ऐतिहासिक ईसा को हाशिए पर करके पापात्माओं की धारक धर्म संस्थापक मसीह को केंद्रीय बल्कि एकमात्र ईसा मान लिया गया। चर्च का विस्तृत धर्म सिद्धांत थियोलॉजी तैयार करने के बाद तय किया गया कि स्वयं ईसा के समय की और उनके तुरंत बाद की ईसाईयत में से किन किन तत्वों को राजसत्ता द्वारा स्थापित किया जाए। पहले निष्कर्ष फिर खोज की उस उल्टी गंगा के बहाव में उस सबको अप्रामाणिक और धर्मद्रोही घोषित कर दिया जो पॉल द्वारा स्थापित पॉलाइन ईसाईयत के चर्च के अनुकूल नहीं पड़ता था। उस सबकी खोज बल्कि रचना कर ली गई जिसके जरिए पॉल के चर्च को स्वयं ईसा का और उनके पिता यानी परमपिता परमात्मा का चर्च घोषित किया जा सके। रोमन सत्ता द्वारा उत्पीड़ित चर्च रोमन कैथोलिक चर्च का रूप लेकर स्वयं सबसे भयानक उत्पीड़क बन चुका था। अब एक पॉल के अनुयायी अपने विरोधियों का वैकल्पिक चर्च का सामना वाद विवाद और छुटपुट हिंसा के जरिए कर रहे थे। अब संसार का सबसे व्यवस्थित और प्रभावी उत्पीड़न तंत्र उनके हाथ में था। आत्मानुसंधान पर गग्नास्टिक रहस्यवादी ईसाइयों का भयानक उत्पीड़न किया गया। ईसा के साथियों द्वारा छोड़े गए 40 संस्मरण गॉस्पेल से में से केवल 4 को प्रामाणिक माना गया, बाकी को अप्रामाणिक घोषित कर दिया गया। कारण वही, भला बताइए ईसा मसीह ऐसा कहे या कर सकते थे? ईसा की अत्यंत प्रिय शिष्या और मित्र मेरी मैगडलीन को ईसा मसीह के ठेठ पुरुषवादी आख्यान में हाशिए पर फेंक दिया गया। आत्मानुसंधान और प्रेम पर जिनका बल था, ऐसे संस्मरणों को अप्रामाणिक और उनके रचयिताओं को खुराफाती बता दिया गया। ईसा की वाणी को भरे पूरे स्वतंत्रता चेता आत्मसंघर्षरत और इसीलिए विभिन्न मनोदशाओं से संपन्न इंसान की आवाज के स्थान पर उनके नाम पर कायम की गई धर्म सत्ता के इकहरे प्रतीक और वचन में बदल दिया गया। इसके बाद ईसा के अपने मित्र मंडल चर्च की बहुवचनात्मकता को रोमन कैथोलिक चर्च के एक वचन में रूपांतरित कर दिया गया। अब आप याद कर सकते हैं कि ऐसे ही मसीही तर्कों से रेवरेंड वेस्टकॉट कबीर वाणी का प्रामाणिक पाठ रच रहे थे। उन्होंने कबीर की शिक्षाएं अपने खुद तय कर ली थी और स्वयं कबीर को उंगली पकड़कर उन पर चला रहे थे। वेस्टकॉट पहले से ही वही कह रहे थे जो चर्च ने ईसा के साथ किया। वेस्टकॉट तो खैर मिशनरी थे। यूरोप में सेकुलर पाठालोचन की विधियों पर भी चर्च द्वारा पाठ निर्धारण के लिए अपनाई गई विधियों का गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर या अन्य लोगों को सख्ती से पाठ निर्धारण करने के निकले विद्वानों के चित्त में आरंभिक चर्चा द्वारा अपनाई गई सख्त पद्धतियों के छापे देखी जा सकती थी। किन्हीं के यहाँ बहुत साफ तौर पे तो किन्हीं के यहाँ सूक्ष्म संस्कार के रूप में। कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर चतुर सुजान लोगों को हाल तो यह है कि कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान। यूरोप में विकसित हुई साहित्यिक पाठालोचन के बारे में मिशेल फूको बताते हैं कि साहित्यिक आलोचना द्वारा लेखक के निर्माण के लिए अपनाई गई विधियां सीधे सीधे उन विधियों से ली गई हैं जो ईसाई परंपरा में पाठों को स्वीकृत या रद्द करने के लिए अपनाई गई थी। रचना में लेखक को फिर से खोज निकालने के लिए आधुनिक आलोचना वैसी ही विधियां अपनाती है जो किसी रचनाकार के संतत्व के आधार पर पाठ का मूल्य निर्धारित करने के लिए ईसाई भाष्यकार अपनाया करते थे। सवाल यह है कि कैसे तय करें कि रचना में झलकने वाला लेखक एक ही है या अनेक। सेंट जेरोम ने 4 प्रतिमान दिए। पहला, किसी लेखक की अनेक पुस्तकों में से कुछ यदि अन्यों की तुलना में घटिया लगती हैं तो उन्हें उस लेखक की नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि लेखक का स्तर हमेशा एक सा मूल्यवान माना जाए। दूसरा, यही तरीका बेहतर को कमतर पर वरीयता देना तब अपनाया जाना चाहिए जबकि लेखक के 2 सिद्धांतों कथनों में अंतर विरोध नजर आए, यानी सुसंगति का लेखक का अनिवार्य गुण मान लिया जाना चाहिए। तीसरा, आम तौर से जैसे मिलते हैं उनमें भिन्न शब्द या लेखकीय तौर तरीके किसी रचना में नजर आए तो उसे खारिज कर देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लेखक में शैलीगत निरंतरता को भी अनिवार्य माना जाना चाहिए। चौथा, अंत में यदि कोई ऐसी कथनादि मिले जिनका संबंध लेखक की मृत्यु के बाद की घटनाओं से है, जो वे प्रक्षिप्त हैं ही, वहाँ लेखक को कुछ घटनाओं के दुराहे तिराहे में खड़ी ऐतिहासिक छवि का रूप दिया जा रहा है। फूको जिन्हें आधुनिक आलोचना द्वारा अपनाई गई विधियां कह रहे हैं, वे असल में यूरोपीय आधुनिकता द्वारा अपनाई गई विधियां हैं, जो अपनी वैश्विक आधुनिकता के साथ गैर यूरोप में पहुंची और विद्वान लोग कहने लगे, भला बताइए, पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते जैसे बातें कबीर कैसे कह सकते, जरूर किसी ब्राह्मण की करतूत है। भारत की देशज आधुनिकता को तो कबीर बीजक जैसे पंथ द्वारा नियंत्रित पाठ में भी यह साखी तक अटपटी नहीं लगे जिसका संबंध स्पष्टतया लेखक की मृत्यु के बाद की घटना से है। हिंदू कहें हम ही ले जारो, तुर्क हम कहें मोर पीउ, देव आए दीनन में झगड़े देखे हंस कबीर। देशज आधुनिकता और भक्ति के लोकवृत्त में और हमारे समकालीनों में से जिनका इस लोकवृत्त से संबंध बना हुआ है, उनके चित्त में कबीर की कविता प्राणवान शरीर जैसी है। वह विवेक, स्मृति और कल्पना के क्षेत्र में मगज में सक्रिय स्पंदित उपस्थिति है। वह शून्य शिखर के साथ ही इस घट भीतर की भी कविता है। शून्य की साधना करते हुए भी अपने परिवेश को बहुत निकट से छूती कविता है। देह के परे जाने की कल्पनाएं कितनी हुई, कबीर की कविता उनके प्रेमियों के पाठ और रूपांकरण परफॉर्मेंस में हाड़ मांस की देह की कविता है। कबीर और उनके अद्वितीय प्रेमी गायक कुमार गंधर्व के संदर्भ में लिंडा हेस ने कबीर की कविता के देहत्व की बहुत सुंदर विवेचना की है। दूसरी ओर कागजी के ऑब्सेशन से ग्रस्त चर्च द्वारा विकसित लेखक निर्धारण की विधियों को अपना संस्कार बना चुकी साम्राज्यवाद के जरिए दुनिया भर में फैलने वाली यूरोपीय आधुनिकता है, जो कबीर की रचना को किताब दी बुक में बदल देना चाहती है। किताब उसी अर्थ में है जिस अर्थ के प्रसंग में कबीर पूछते थे कौन केतब बखानी और कहते थे का वेद पुराना सुनिए। औपनिवेशिक आधुनिकता के प्रभाव से कुछ हुए कबीर वाणी संकलन और अध्ययनों में अपनी मनचीती व्याख्या में बाधा डालने वाली कबीर वाणी को प्रक्षिप्त बता रहे का मुंह कदम कदम पर दिखता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर का गहरा संबंध नाथ पंथियों से मानते थे। प्रभाव का भी और विवाद का भी इस संबंध को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कबीर को जुलाहा वंश बस पालित ही मानने पर जोर दिया। वह भी ऐसे वंश जो वयन जीवी नाथ मतावलंबी गृहस्थ योगियों की जाति का सधर्मांतरित रूप भी था। इस बात को और रेखांकित करने के लिए द्विवेदी जी ने खशम शब्द को ध्यान दिया। बताया कि योगियों की पारिभाषिक शब्दावली में खशम का अर्थ शून्य समाधि वाली गगनोपमा अवस्था है और कबीर इसी अर्थ में योगियों की सच्चाई बताने के उद्देश्य से ही खशम शब्द का प्रयोग करते हैं। कबीर द्वारा खशम शब्द के गैर पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग के संदर्भ में द्विवेदी जी की यह संभावना मानते तो हैं कि कभी कभी कबीरदास स्वयं खशम शब्द परा समर्थित अर्थ में प्रयोग नहीं करते। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि जिन पदों में खशम का अर्थ शून्य समाधि वाली गगनोपम अवस्था न होकर सीधे सीधे पति या स्वामी ही निकलता है, ऐसे पद कबीरदास के नाम पर बाद से चल पड़े होंगे। इन अनुमान का कोई आधार द्विवेदी जी नहीं बताते। आधार कोई भी है या नहीं, सिवा इसके लिए ऐसे पदों में खशम शब्द का प्रयोग द्विवेदी जी के मनोवांछित अर्थ में नहीं किया जा रहा। मनोवांछित अर्थ में बाधक शब्दों और शब्दों साखियों की प्रक्षिप्त बात कर फारिग होने की यह पद्धति औपनिवेशिक आधुनिकता के कबीर पाठों की अपनी पहचान है। आधुनिक कबीर अध्ययनों पर वेस्टकॉट की छाया सचमुच बहुत लंबी पड़ी है। कबीर का पाठ निर्धारण निस्संदेह आवश्यक काम है, लेकिन प्रामाणिक रूप से किया तभी जा सकता है जबकि पाठ निर्धारण के प्रसंग में भी अन्य प्रसंगों की तरह यूरोप द्वारा आरोपित औपनिवेशिक आधुनिकता और देशज आधुनिकता के मिजाज और उनकी विधियों के बीच के फर्क का ध्यान रखा जाए। कविता की द बुक बनाने की प्रलोभन को दूर रखा जाए। कागजी के साथ ही मगजी की महत्ता को भी मगज में एक जगह दी जाए, तभी तो हम यह सवाल का सही जवाब पा सकेंगे कि किन आधारों पर देशज आधुनिकता किन रचनाओं को कबीरकृत होने की मान्यता देती थी और किन्हें नहीं देती थी। यह भी ध्यान में रखना होगा कि दादूपंथियों, कबीरपंथियों और आदि ग्रंथ के संकलनकर्ताओं की विधियों और प्राथमिकताओं में अंतर क्या था और संबंध क्या। ऐसा करने पे पांडुलिपियों में अप्राप्य लेकिन कबीर के समाज में सर्वमान मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, झीनी झीनी भीनी चदरिया, संतो सह समाधि भली और जग से नाता टूटल हो सरीखे मार्मिक पदों से वंचित होने की जरूरत आधुनिक कबीर स्कॉलर्स को नहीं पड़ेगी, जिन्हें हम किसी पांडुलिपि में कहीं खोज पाए। लेकिन जो लोग की मगजी परंपरा के अपने सख्त प्रतिमान से गुजर कर कबीर वाणी के रूप में स्वीकृत हैं, उन रचनाओं को खारिज करने की बजाय कबीर को उपरचना माना मान लेना बेहतर है। और कौन जाने कल को इनमें से कोई उपरचना किसी कागजी स्रोत किसी प्राचीन पांडुलिपि में भी मिल ही जाए। कैसी मैनुस्क्रिप्ट स्कॉलर के स्टार सिस्टम में 3, 2 या 1 स्टार पा ही लिए जाए। संतों बीजक मत वरसाना, बीजक पर बहस। हमने चर्च द्वारा ईसा और उनके साथियों की बहुवचनात्मकता पर नियंत्रण करने की चर्चा की है, लेकिन ऐसे नियंत्रण की जरूरत तो हर पंथ को संप्रदाय को पड़ती है। कबीर पंथ को भी पड़ी बेहद मानिखेज और अस्तित्ववादायक। फर्क यह है कि भारत की देशज आधुनिकता में बीजक के बाहर कबीर को पढ़ने वालों को वह नहीं झेलना पड़ा जो यूरोप में चर्च रचित मसीह छवि के बाहर ईसा को पढ़ने की कोशिश करने वालों को झेलना पड़ा था। बीजक बतावे वित्त को मानने वाले, बीजक को पंथ का आर्ट्स ग्रंथ मानने वाले अपनी राह चलते रहे और दादूपंथी साधकों द्वारा संकलित लेखबद्ध कवि को सराहने वाले अपनी राह के लिए रहे। यही नहीं, एक दूसरे से संवाद भी करते रहे, आज तक कर रहे हैं। बीजक मत परमाना को आधार बनाकर पंथ मौखिक परंपरा के साथ कैसा व्यवहार करता है, यह कबीर चौरा वाराणसी से प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के 11वें संस्करण को देखने से स्पष्ट हो जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक के बाहर भी मिलती हैं, यह बात पंथ अनकहे रूप में स्वीकार करता है। कबीर शब्दावली का प्रकाशन आचार्य महंत अमृतदास के आशीर्वाद के साथ किया गया था। इसमें ऐसे शब्द शामिल किए गए थे जो बीजक तो क्या दादूपंथी पांडुलिपियों में भी नहीं मिलते, बस लोक स्मृति में कबीर वाणी के रूप में विद्यमान है। हाँ, स्वाभाविक रूप से उन्हीं रचनाओं को इसमें रखा गया है जो चौरा स्वीकृत पंथ सिद्धांत के अनुकूल हों। उन रचनाओं को निकाल दिया गया है जो सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत अनुकूल प्रायः नहीं जान पड़ती थी। कबीर के कई सौ साल पहले जब कबीर पंथ की स्थापना हुई तो स्वाभाविक रूप से पंथ की विशिष्ट पोथी की जरूरत पड़ी। भक्ति के लोकव्रत में प्रचलित कबीर रचनाओं में से चुनाव करके यह जरूरत पूरी की गई। दादूपंथी और निरंजनपंथी संकलनकर्ता अपने संकलनों में उन्हीं कबीर रचनाओं को सम्मिलित करने से बच रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से कालक्रम दोष जैसे मुगल शब्द का प्रयोग या कबीर की सर्वमान्य संवेदना से विरोध दिखता हो। बीजक के संकलनकर्ता ऐसी सभी कबीर रचनाओं से बचे जो उनके पंथ द्वारा विकसित समझ के विपरीत पड़ती थी। आश्चर्य नहीं कि 1570 से 1681 के बीच कबीर कृत माने जा चुके 593 पदों में से केवल 32 ही बीजक में मिलते हैं। कबीर पंथियों ने अपनी जरूरत के मुताबिक कबीर वाणी का पाठ अपने लिए तय कर लिया। दादूपंथी पाठ पंथ के लिए उलझन पैदा करता था, इसलिए पंथ ने अपने व्यवहार के लिए मान लिया बीजक मत परमाना। इस तरह की उक्तियों का एक संदर्भ यह भी था कि विभिन्न शाखाएं अपने अपने विशिष्ट ग्रंथों जैसे अनुराग सागर और सुख निधान को भी प्रमाण मानती ही थीं। इन प्रमाणों की प्रामाणिकता अंततः बीजक के अनुकूल होने पर निर्भर है। यह रेखांकित करने के लिए कहा गया संतो बीजक मत परमाना। बीजक कबीर की सभी रचनाओं का संकलन नहीं, चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। वह कबीर का कलेक्टेड वर्क्स नहीं, सिलेक्टेड वर्क्स है। पंथ की जरूरत के अनुसार तैयार किया गया सिलेक्टेड वर्क, इसी जरूरत के अनुसार बीजक में संकलित पदों में पाठ भेद भी पाया जाता है। प्रेमदास उत्तराधा के पाठ माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित ग्रंथावली के राग गौड़ी का पद 116 मिलता है बीजक में भी। लेकिन उत्तराधा के पाठ में जहां दाम्पत्य प्रेम का रूपक आदि अंत तक निभाए गए, वहीं बीजक के पाठ सुखदेव सिंह द्वारा संपादित संस्करण का पद 35 में रूपक को काटने के माध्यम से साधना की दिशा में मोड़ दिया गया। ग्रंथावली में पद इस रूप में है, हरि मेरा पीव भारी, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव, हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया, राम बने मैं छटुक लहुरिया, किया स्यांगार मिलन के ताई, काहे न मिलो राजा राम गुसाई, अब की बेर मिलन जो पाऊं, कहे कबीर भौ जल नहीं आऊं। और बीजक में इस रूप में है, हरी मोरा पी मैं राम की बहुरिया, राम मोर बड़ो मैं तन की लहुरिया, हरी मोर रहटा मैं रतन पियूरिया, हरी को नाम ले कतती बहुरिया, मास तागा बरख दिन कुकुरी, लोग कहे भल कातल बपुरी, कहे कबीर सुत भल काता, चरखा न होए मुक्ति कर दाता। बीजक के संकलन की प्रेरणा थी कबीर की पंथ प्रवर्तक छवि। संकलनकर्ताओं का संग्रह त्याग विवेक इस छवि के अनुशासित हो रहा था। उन्हें कबीर वाणी में प्रेम वेरा मिलन के लौकिक स्वरों को नियंत्रित करना जरूरी लगा। उन्हें कबीर वाणी में प्रेम वेरा मिलन के लौकिक स्वरों को नियंत्रित करना जरूरी लगा। सो लौकिक प्रेम के रूपक बांधने वाले पदों में से बचा गया या रूपक का रूप ही बदल दिया गया। इस तरह उन्हें पंथ प्रवर्तक की वाणी में विचारधारात्मक सुसंगति बनाए रखने जरूरी लगा। इसलिए पद संख्या 108 अब हम भयल बहुरी जल मीना आदि ग्रंथ की पाठ में पहली पंक्ति है, जीव जल छोड़ बाहर भयो मीना, पद में से ओछी भगति कैसे उतरसी पारी, यह पंक्ति हटा दी गई। कबीर के बहुत से आधुनिक अध्येताओं को भी कबीर की मनोवांछित रेडिकल छवि से ही मतलब था, कवि की मनुष्यता और आत्मानुसंधान से नहीं। उन्हें बीजक का गैर वैष्णवीकृत रूप अपने काम लगा। प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर ही भक्ति संवेदना और आंदोलनों को समझने की सलाह सबको देने वाले सुजान लोग 19वीं सदी की पांडुलिपि के आधार पर संकलित बीजक को 1604 के आदि ग्रंथ और उसी के आसपास की दादूपंथी निरंजनपंथी पंचबानियों और सर्वांगियों से अधिक प्रामाणिक मानने लगे। दादूपंथ जैसे पथ को, रज्जत जैसे साधक को इस चक्कर में ब्राह्मणवादी मान दिया गया, सो अलग। बीजक के संकलन की प्रेरणा स्वयं बीजक में ही बोलती है, अभिमानी करता हो बैठे नाना पंथ चलाया। नाना पंथों के बीच अपने पंथ का आधिकारिक प्रवर्ता बीजक को कबीर पंथियों ने बनाया, स्वयं कबीर ने नहीं। संकेतपूर्ण है कि यह पंक्ति सुखदेव सिंह द्वारा बरती गई दानापुर शाखा की प्रतीत में तो है, लेकिन जिस भक्ताही शाखा को सुखदेव जी ने अपने पाठ निर्धारण का मुख्य आधार बनाया उसकी प्रति में नहीं। कारण समझना मुश्किल है। मान्यता है कि कबीर के शिष्य भगवान दास ने बीजक पर एकाधिकार सा जमा लिया था। अन्य शिष्य और उनके अनुयायी भगवान दास को भग्गो दास कहने लगे थे। भगवान दास के प्रति परंपरा के भगत शाही शाखा के अधिकारी में रही। अब उस शाखा में अभिमानी करता भला क्यों कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा। जो कबीर पंथी बीजक और प्रकारांतर पर कबीर पर एकाधिकार करने के प्रयत्नों से असंतुष्ट थे, वे ऐसे प्रयत्न करने वालों के प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग करें, यह समझ में आता है। 16वीं 17वीं सदी के राजस्थानी और पंजाबी स्रोतों में उपलब्धता के आधार पर कबीर का पाठ निर्धारण करने और बीजक पर उचित ध्यान न दिए जाने के प्रसंग में बीजक के संपादक डॉ. सुखदेव सिंह की शिकायत है कि बीजक के अतिरिक्त कबीर के नाम पर जो रचनाएं मिलती हैं, प्रामाणिकता की दृष्टि से उनकी परीक्षा करके देख लिया गया कि प्रायः प्रामाणिक रचनाएं कबीर पंथ के प्रत्यक्ष प्रवाह में नहीं मिलती। प्राचीन लिपि शैली तथा पाठादि की दृष्टि से दादूपंथी निरंजनपंथी और सर्वंगी जैसे कबीरेतर संप्रदायों की पोथियों में एवं गुरु ग्रंथ कबीर की जो रचनाएं मिलती हैं उन्हें ही प्रामाणिक माना जाता है। इसी प्रसंग में अंततः यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन प्रायः प्रामाणिक पोथियों में राजस्थानी पंजाबी के भाषिक प्रक्षेप तथा अन्य प्रकार के प्रक्षेप भी हैं। साथ साथ यह भी स्थिर हो गया है कि बीजक का ग्रंथन प्रकार और भाषा शैली उक्त संत काव्य संग्रहों से भिन्न प्रकार की है और तब इस परिणाम तक पहुंच जाने की किसी की निराश का अवकाश नहीं कि बीजक पर विचार करते समय स्वतंत्र परंपरा कबीर पंथ के सैद्धांतिक आग्रह तथा दर्शन को ध्यान में रखकर विचार किया गया है। सुखदेव सिंह शिकायत में ही सच्चाई रेखांकित कर रहे हैं। कबीर पंथ के सैद्धांतिक आग्रहों को समझने का स्रोत निस्संदेह बीजक ही है, लेकिन यदि कबीर की अपनी वैचारिकता और संवेदना को पढ़ना हो तो के अकेले बीजक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ग्रंथावली, आदि ग्रंथ और मौखिक परंपरा के साथ मिलकर ही बीजक को पढ़ना पड़ेगा। यह बात प्रकारांतर से स्वयं पंथ स्वीकार करता है, जैसा कि हम कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली के प्रसंग में देख चुके हैं। इस पुस्तक में हमारा ध्यान कबीर की कविता पर है। पंथ और उसके सैद्धांतिक आग्रहों के विकास का सहानुभूतिपूर्वक अध्ययन करना निश्चय ही बहुत जरूरी है। इस दिशा में कुछ काम मैंने किया भी है, लेकिन उसकी चर्चा अलग पुस्तक में है। फिलहाल तो इतना ही है कि जुलाहे साधक को धर्मगुरु में तब्दील करने वाले कबीर पंथ की मान्यताओं को समझना आवश्यक है, उन्हें आत्मसात कर लेना नहीं। पंथ निर्माण की सहानुभूति से देखना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है पंथ के सत्ता तंत्र पर ध्यान देना। कबीर को जुलाहा कुलोत्पन्न की बजाय अलौकिक रीति से अवतरित बताना उन्हें धर्मगुरु बनाने के लिए जरूरी था। दादूपंथी परंपरा के पाठ की अपेक्षा करना और बीजक को धर्मशास्त्र की दर्जा दे देना भी पंथ के लिए इसीलिए ग्रंथ था और इसीलिए जरूरी था। अपने गुरु के लिए अनंत उपकार के प्रति कृतज्ञ कबीर गुरु की महिमा अनंत बखानते नहीं थकते। कई जगह तो उनका बखान अनुभव और आत्मविवेक पर सद्गुरु के शब्द को वरीयता देता तक प्रतीत होता है। पंथ ने इस बखान का उपयोग गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण हासिल करने के लिए किया। गुरु के प्रति कबीर की कृतज्ञता का विस्तार दामाखेड़ा शाखा में धनी धर्मदास की वंश के प्रति समर्पित आस्था में कर दिया गया। बीजक की व्याख्याएं भी ऐसे समर्पण की कबीर पंथियों के लिए अनिवार्य ठहराने के हिसाब से ही की गई। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में पंथ की विभिन्न शाखाओं के परस्पर विवादों के बाद बीजक की प्रामाणिकता से भी आगे उसकी व्याख्याओं की प्रामाणिकता बन जाती है। इन विवादों के संकेत स्वयं बीजक से ही प्राप्त होते हैं। साखी 251 कहती है, कबीरन भक्ति बिगाड़ या कंकर पत्थर धोए, अंतर में विष राखी के अमृत डारिन खोए। पंथ की हर शाखा अपने संस्थापक को स्वयं कबीर का ही विस्तार मानती है। परस्पर विवादों में ऐसे हर कबीर पर दूसरे कबीर भक्ति को बिगाड़ देने का आरोप लगाया करते हैं। व्याख्याओं के ऐसे विवादों से गुजरते हुए बीजक के जीवन में 19वीं सदी में महत्वपूर्ण मोड़ आया। अब तक बीजक के संदेश की सही व्याख्या पंथियों और सागरों और बोधों जैसे ग्रंथों तथा प्रत्यक्ष संवाद के जरिए ही पहुंचाई जाती थी। 19वीं सदी में पहली बार बीजक की दो टीकाएं रची गईं, दामाखेड़ा की धर्मदास थी, गादी के स्वतंत्र पारख मार्गी गादी की स्थापना बुरहानपुर में करने वाले पूरण साहब ने अपने विचारों के समर्थन में सदगुरु के शब्दों का उपयोग करने के लिए 1837 में बीजक की पहली टीका त्रिजा रची। त्रिजा छपी जरूर 1910 में, लेकिन पारख मार्गी साधियों के जरिए भक्ति के लोकवृत्त में प्रकाशित पहले ही हो चुकी थी। कबीर के धर्मगुरु बना दिए जाने के बाद स्वाभाविक ही था कि पंथ के विभिन्न शाखाओं के बीच प्रभाव विस्तार की होड़ चले। मजहबों, पंथों और संप्रदायों के बीच भौतिक, मानवीय और प्रतीकात्मक संसाधनों को लेकर प्रतिद्वंदिता भारतीय इतिहास की अनोखी विशेषता नहीं, विश्वव्यापी परिघटना है। ईसाइयत में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच और इस्लाम के शिया सुन्नी के बीच रक्तरंजित संघर्षों के मूल में ही यही प्रतिद्वंद्वता रही है। कबीर पंथ में विभिन्न शाखाओं के बीच प्रभाव विस्तार की होड़ तथा बीजक के अर्थ पर बहस 19वीं सदी के पहले भी चल रही थी, उसके बाद भी चलती रही। त्रिजा का महत्व ऐसी बहस का पहला लिखित रूप में होने में है। इसमें कबीर को जैनों जैसा जीववादी सिद्ध किया गया। त्रिजा का खंडन करने के लिए विश्वनाथ सिंह जूदेव 1789 से 1854 ने पाखंड खंडनी लिखी थी। इसका पहला मुद्रण लिथो पर 1868 में हुआ, फिर यह नवल किशोर प्रेस से 1883 में छपी, इसके बाद 1906 में वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से। त्रिजा में कबीर वाणी को चार मुखों के बीच नाटकीय संवाद के रूप में पढ़ने का रोचक प्रस्ताव किया गया। पारख मार्गी संत राम स्वरूप दास समझाते हैं, कि भ्रम कल्पना में पड़े हुए जीवों को जोलहा दास कबीरा कहते हैं। दास कबीर अज्ञानी भक्त लोगों को कहते हैं। कबीरन भक्ति बिगार या अज्ञानी जड़ मूर्ति पूजक और भ्रमित उपासक लोगों को कहा जाता है। कहे कबीर में गुरुआ लोग उपदेश करते हैं ऐसा भाव निकलता है। हौ कबीर इत्यादि अहम संयुक्त कथन ब्रह्ममुख माना जाता है और कहीं कबीर और हंस कबीर इत्यादि छाप युक्त वाणी सदगुरु श्री कबीर साहिब जी की अपनी गुरुमुख वाणी भ्रम छुड़ाने वाला सार शब्द मानी जाती है। इसलिए कबीर छाप के साथ कहीं अर्थात गुरुमुख, कहें अर्थात मायामुख, दास अर्थात जीवमुख, हौ अर्थात ब्रह्ममुख का भाव प्रदर्शित होता है। इसका यथार्थ भेद समझना चाहिए। बीजक भर की सब वाणी सदगुरु श्री कबीर साहिब का अपना ही सिद्धांत प्रदर्शित नहीं करती, अन्य लोगों का भी सिद्धांत प्रदर्शित करती हैं। ध्यान दें, बीजक की इस चतुर्मुख पाठ विधि में दास कबीर के मुख से बोलने वाले अज्ञानी ही सही लेकिन भक्त हैं, जबकि जोलहा दास कबीर के मुख से सिर्फ भ्रम कल्पना में पड़े जीव ही बोलते हैं। कवि कविता की धर्मशास्त्र की तरफ पढ़ रही चार मुखों की इस क्रमिकता हायरार्की में जुलाहा मुख का सबसे नीचे होना उसी संकोच का परिणाम है जिसके कारण कवि को जुलाहे में अवतार बनाया गया था। पाखंड खंडिनी में दिया गया कबीर जन्म आख्यान तो हमने पिछले अध्याय में देख ही चुका है, अपने जन्म का आख्यान भी देखें। कबीर जी की वाणी के अर्थ कबीर करीबे को मुंह में सामर्थ्य नहीं रही, परंतु साहब यह विचारी के कि कबीर जी के बीजक को पाखंड अर्थ लगाई के जीवन बिगड़ जाए हैं। सो साहब तो परम दयालु हैं, उनको करुणा भई, तब कबीर जी को भेजियो या कही के आगे हम तुमको भेजियो हे, तो सो तुम ग्रंथ बनाई के बहुत जीवन के उपदेश करी के उधार कियो सो। अब तिहारे ग्रंथ को पाखंड अर्थ करी कई पाखंडी हवय के जीव बिगड़े जाए हैं और बहुत बिगड़ी हैं, सो तुम जाई के जौन अर्थ तुम बीजक में राखियो हैं, सो अर्थ विश्वनाथ सो बनवाओ जाते, सो अर्थ समझे के जीव हमारे पास आवे, सो कबीर जी आई के मोसो कहियो कि तुम बीजक को अर्थ बनाओ हम तुमको बतावेंगे, सो उनकी हुकूमते मैं बीजक को अर्थ बनाऊं हों बतावने वाले कबीर जी हैं। कविता को धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ने पर उनके साथ किया जाने वाला व्यवहार भी बदल जाता है, उससे की जाने वाली उम्मीदें भी। बीजक के कवि ने जैसे ही कहा तीर्थ गए थे वही मुए, पाखंड खंडिनी कार ने तुरंत बताया कि असल में तीर्थ यात्रा उनकी व्यर्थ है, जौन नहावे की विधियां हैं और सौ एको न कियो। कल्पना करें कि त्रिजा और पाखंड खंडिनी के लेखक बीजक की कविता की तरह पढ़ते, तब उन्हें अपने मतों को ही बीजक का सच्चा अर्थ सिद्ध करने की जरूरत न पड़ती। पूरण साहब कह सकते थे कि बीजक ने पारक पद्धति की ओर संकेत करते तो अच्छा किया, लेकिन ब्रह्म की बात करना बीजक की सीमा है, सत्ता केवल जीव की है। पाखंड खंडिनी के लेखक कह सकते थे कि सत्य अहिंसा सदाचार की बात बीजक ठीक ही करता है, लेकिन तीर्थ यात्रा को व्यर्थ बताना ठीक नहीं। कवि की सराहना करते हुए उसे असहमति भी व्यक्त कर सके, यह संभावना कवि के धर्मगुरु और कविता के धर्मग्रंथ बनते ही समाप्त हो जाता है। बीजक को धर्मग्रंथ मानने वाले टीकाकारों के सामने रास्ता एक ही था, अपने मत को सद्गुरु का सच्चा उपदेश सिद्ध करना। कवि से आप बेखटके असहमत हो सकते हैं, लेकिन धर्मग्रंथ की धर्मसत्ता द्वारा मान्य व्याख्या से असहमत होने पर जमात बाहर होने वाले की संभावना है। पूरण साहब के साथ ऐसा ही हुआ था। बीजक को पंथ स्वीकृत ढंग से हटकर पढ़ने के कारण दामाखेड़ा से उनका विच्छेद हुआ। उसके बाद ही उन्होंने त्रिजा के माध्यम से अपने विचारों को सद्गुरु की सच्चा उपदेश सिद्ध करने का प्रयत्न किया। धर्मगुरु बनाने की प्रक्रिया में ही कबीर वाणी धर्मशास्त्र में बदल गई। कविता और धर्मशास्त्र को पढ़ने के वातावरण में फर्क होता है। कबीर ही नहीं धर्मगुरु बना दिए गए, अन्य कवियों से भी प्रेम करने वालों को सोचना चाहिए कि उन्हें कौन सा वातावरण सुहाता है। कविता की ऐसे धर्मशास्त्र में बदलने वाला वातावरण जिसमें कवि से संबंध आप मठाधीशों और आधिकारिक व्याख्याकारों से अनुमति लेकर ही बना सकें, या ऐसा वातावरण जिसमें धर्मशास्त्रों को भी कविता की तरह विवेक, अनुभव और संवाद के साथ पढ़ना संभव हो। कबीर को पढ़ने के लिए उनकी रचनाएं, उपरचनाओं के परस्पर संबंध को, उनके संकलन के परिवेश की विशेषताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। प्रामाणिकता का निर्धारण करते हुए उन प्रतिमानों को अपनाना ही सार्थक है जो भक्ति के लोकवृत्त में अपनाए गए। कालक्रम दोष से मुक्त उन रचनाओं को अवहेलना करना व्यर्थ है जो इस लोकवृत्त में कबीर कृत मानी गई हैं। दूसरे शब्दों में जहां से आयो अमर वह देसवा को कबीर कृत न भी माने तो, क्योंकि इसमें सैयद पठान और शेख के साथ मुगल के भी दर्शन होते हैं, लेकिन झीनी झीनी भीनी चदरिया को नकारना व्यर्थ है। भला बताइए, कबीर कहीं ऐसा कह सकते हैं टाइप के कबीर को अपने विचार धारात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का औजार बनाने वाले पाठ निर्धारण से तो आप कबीर का ऐसे विचारधारात्मक उद्देश्यों के लिए एप्रोप्रिएशन ही कर सकते हैं। कबीर और उनके समय के संवेदना तक पहुंचने वाले का सवाल ही नहीं। भक्ति के लोकवृत्त में अपनाई गई पाठ निर्धारण पद्धति पर चलकर ही हम कबीर तक विश्वसनीय ढंग से पहुंच सकते हैं। न तो मौखिक परंपरा को मैन्युस्क्रिप्ट स्कॉलरशिप की ऊंचाई में धिक्कारने की जरूरत है, और न कबीर के नाम पर प्रचलित हर रचना को कबीर कृत मानने में। साजिश और बुद्धूपन जैसे की कॉन्सेप्ट्स के माया मोह से मुक्ति परम आवश्यक है। रचना, उपरचना और अंतर संबंध को लगातार ध्यान में रखना जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने 2007 में नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली के लिए कबीर साखी और सबद नामक संकलन तैयार किया। इसमें मुख्य रूप से माता प्रसाद गुप्त की ग्रंथावली यानी दादू पंथी साधु प्रेम दास उत्तराधा के पाठ को आधार बनाते हुए बीजक से भी रचनाएं ली गई थी, पद सूरदास जी का से भी, आदि ग्रंथ से भी और मौखिक परंपरा से भी रचनाएं ली गई थी। मालवा के लोक गायकों द्वारा गाए जाने वाले कुछ कबीर पद भी कबीर साखी और सबद में शामिल किए गए थे। इस कविता में और इस किताब में भी अपनी बात कहने के लिए हम इस पद्धति पर चलेंगे। कविता पर बात करने के प्रसंग में यह जरूर खटकने वाली बात है कि कबीर की अपनी भाषा तक पहुंचना अब लगभग असंभव है। थे वे पूरब के रचना उनकी संकलित हुई राजस्थान और पंजाब में, बीजक में भी परवर्ती प्रभाव है ही। आखिरकार बीजक की पांडुलिपियां 200 साल के पीछे ही नहीं मिलती, लेकिन संतोष इस बात का है कि कबीर की भाषा तक पहुंचना भले ही दूभर हो चुका है, उनकी काव्य भाषा के तेवर और मिजाज को, उनके समृद्धि को मौखिक परंपरा ने भी सुरक्षित रखा है और ग्रंथावली आदि ग्रंथावली तथा बीजक ने भी। लेकिन कबीर की कविताई तक पहुंचने के पहले तो हमें कबीर के गुरु रामानंद, कबीर की साधना, भाव भगति आदि पर विचार करना है। अगले अध्याय में आप कबीर रामानंद संबंध का और स्वयं रामानंद की संस्कृत निर्मित का अद्भुत भेद भरा आख्यान पढ़ेंगे।